आयु ने आरव को फैज के बारे में बता दिया था। हालांकि उसे फैज का नाम अच्छे से याद नहीं था, लेकिन उसने जिस हिसाब से टूटे फूटे शब्दों में उसका नाम बताया तो आरव पहचान गया और इस वक्त उसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। पिछले जन्म में भले ही फैज ने आरव और आयु को अकेले छोड़ दिया था, लेकिन इस वक्त आरव किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता था। आरव ने आयु को कसकर गले से लगा लिया। कुछ देर तक आयु ने कुछ नहीं कहा, फिर वो उससे अलग हो गई। आरव को परेशान देखकर आयु ने पूछा, तुम घबरा क्यों रहे हो? कौन है वो इंसान और मुझे कैसे जानता है? तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन साफ बता रहे हैं कि तुम उसे जानते हो। हाँ, जानता हूँ, और वो कोई अच्छा इंसान नहीं है। ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, बस उससे दूर रहना, आरव ने जवाब दिया। उसने अभी तक आयु से इस बात को छुपाकर रखा था कि पिछले जन्म में वो माहिरा या फैज की तरह माफिया की दुनिया का हिस्सा था। उसने मुझसे कहा कि खुद का ख्याल रखना और अननोन लोगों से बात मत करना। वो मेरी परवाह कर रहा था, वो एक अच्छा इंसान लग रहा था। फिर तुम उसके बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो? आयु ने सिर हिलाकर कहा। वो मामले को काफी नॉर्मली ले रही थी, इस वजह से आरव को उस पर बहुत गुस्सा आया। आरव ने गुस्से में आयु को दोनों हाथों से पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए सर्द लहजे में कहा, जब पूरी बात पता ना हो तो अपना ओपिनियन नहीं देना चाहिए। अरे जानती क्या हो तुम उस शख्स के बारे में? उसकी वजह से हमारे दोनों बच्चों की जान जाते जाते बची थी। उसकी वजह से 3 साल से भी ज्यादा टाइम तक एक दूसरे से दूर रहना पड़ा था। क्या, 2 बच्चे? अच्छा, ऐसे हम कौन सी उम्र में मरे थे जो हमारे 2 बच्चे तक हो गए थे? अचानक आयु ने पूछा। तुम्हारे सवाल बहुत इरिटेटिंग होती है मिसेस खुराना, तुम पिछली लाइफ में ही ठीक थी। मन तो करता है तुम्हें सब कुछ बता दूं ताकि याद आ जाए, पर कोई फायदा नहीं है। अगर कुछ बताया भी तो तुम सवाल पूछकर और ज्यादा इरिटेट करोगी। वन मोर थिंग, 2 बच्चे इसलिए थे क्योंकि हमारे ट्विन्स थे, आरव ने जवाब दिया। अचानक ही उसके चेहरे पर मायूसी के भाव थे। पता नहीं मेरा आर्या कहाँ होगा, आरव ने धीरे से कहा। आरव के अचानक चुप हो जाने पर आयु ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, अच्छा तुम चिढ़ क्यों रहे हो? मैं तो तुम्हें ऐसे ही थोड़ा परेशान कर रही थी। तुमने बताया कि मरते वक्त हमारी बेटी मेरी गोद में थी। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है, पर फिर भी मान लेती हूँ। तो दूसरा बच्चा लड़का था या लड़की, और वो इस वक्त कहाँ है? क्या वो जिंदा है? मुझे नहीं पता, मैंने उसके बारे में पता लगाने की कोशिश भी की थी पर नहीं पता चल रहा। अब ज्यादा सवाल मत पूछो क्योंकि तुम्हारे सवाल मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं खुद को लाचार महसूस कर रहा हूँ क्योंकि कुछ नहीं कर पा रहा, आरव ने धीरे से जवाब दिया। उसने अपनी तरफ की लाइट बंद की और सोने लगा। आयु को भले ही कुछ याद ना हो, लेकिन आरव को परेशान देखकर वो भी परेशान हो रही थी। उसने मन ही मन कहा, अगर सच में मेरा भी रीबर्थ हुआ है तो मुझे क्यों नहीं याद आ रहा है? डिस्गस्टिंग, मुझे कितना बुरा लगता है, इसे पता भी नहीं और ऊपर से मुझे डांटता रहता है। सोचते हुए आयु ने गुस्से में आरव की तरफ देखा, जो नींद न आने पर करवटें बदल रहा था। ऐसे करवट बदलने से नींद नहीं आएगी मिस्टर खुराना, दिल को हल्का महसूस नहीं होगा तब तक तुम्हारा ब्रेन तुम्हें सोने नहीं देखा, आयु ने जवाब दिया। आरव उठकर बैठा और उसने आयु की तरफ देखकर कहा, हाँ जानता हूँ, और मेरा दिमाग कभी मुझे सुकून से रहने कहाँ देता है। उसके बाद आरव ने बेडसाइड के पास वाली ड्रॉर खोली और उसमें से दवाइयां निकाली। वो दवाइयां लेता उससे पहले आयु ने उसका हाथ पकड़ लिया और ना में सिर हिलाया। आयु ने आरव की तरफ देखकर सख्ती से कहा, ये तो मैं तुम्हें नहीं लेने दूंगी, स्लीपिंग पिल्स ज्यादा लेने से इंसोम्निया हो जाता है। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन ना हो, पर तुम धीरे धीरे सब बताकर मुझे याद दिलाने की कोशिश कर सकते हो। मेरा दिमाग चाहे कितना भी झुटलाने की कोशिश करे, पर आज उस आदमी से मिलने के बाद मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन आ रहा है। चलो बताओ ना, हम पहली बार कैसे मिले थे? ऐसे नहीं बताऊंगा, अगर मैं तुम्हारी बात मानूंगा तो तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी, आरव ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। वो लेट गया और उसने आयु को अपने पास आने का इशारा किया। आयु ने आईज रोल की और ना में सिर हिला दिया, फिर भी आरव ने उसे अपने पास खींच लिया था। आरव आयु को खुद में समेटते हुए बोला, मेरा टच तुम्हें अनकंफर्टेबल करे तो बता देना। यही तो प्रॉब्लम है कि तुम्हारा टच कभी अनकंफर्टेबल करता ही नहीं है, आयु ने काफी धीरे से कहा। फिर भी आरव को सुनाई दे गया तो उसके फेस पर हल्की स्माइल आ गई। आरव आयु के बालों से खेलते हुए बोला, पहली बार फेस टू फेस एक पार्टी में मिले थे, उसके अलावा उससे पहले तुमने मेरी गाड़ी पर स्क्रैच कर दिए थे क्योंकि तुम्हें लगता था कि मैंने तुम्हारी बहन को मारा है। अच्छा, तो सच में तुमने मेरी बहन को मारा था? पिछले जन्म में भी बहुत बुरे इंसान थे तुम, इस जन्म में भी मेरी बहन को नुकसान पहुंचाना चाहते थे और पहले भी, आयु ने उसे छेड़ते हुए कहा। मैंने किसी को नहीं मारा था, बस तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उसकी मौत एक्सीडेंटल थी। उसके बाद धीरे धीरे हम मिलने लगे, कभी क्लब में, कभी किसी पार्टी में तो कभी हॉस्पिटल में। तुम मेरे ही हॉस्पिटल में जूनियर न्यूरोसर्जन की पोस्ट पर थी, मुझे तो तुम्हें पहली नज़र में देखते ही प्यार हो गया था। हाँ, तुम्हें थोड़ा टाइम लगा था, आरव ने आयु को शॉर्ट में उनकी पहली मुलाकात और प्यार होने तक की कहानी को सुनाया। वो सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को ही पिक कर रहा था ताकि आयु के माइंड पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। आरव ने महसूस किया कि आयु सो चुकी है, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। उसने आयु के चेहरे की तरफ देखकर कहा, मुझे सुलाने का दावा कर रही थी और देखो खुद बीच में ही सो गई, कैसी पागल लड़की के तौर पर जन्म लिया है तुमने मिसेस खुराना। आरव ने आयु के फोरहेड पर किस किया और उसे वैसे ही बाहों में लिए हुए कुछ ही देर में वो भी सो चुका था। अगली सुबह आयु की आंख खुली तो उसने खुद को आरव की बाहों में पाया। उसे हॉस्पिटल जाना होता था इसलिए वो अपने रूटीन के हिसाब से जल्दी उठती थी। आयु ने आरव के गाल पर किस किया और फिर उठकर बाथरूम में चली गई। आयु जब तैयार होकर वापस आई तब तक आरव भी आज जल्दी उठ चुका था। आयु ने अपना मोबाइल चेक किया तो उस पर निर्वाण का मैसेज आया हुआ था। उसे देखते ही आयु के चेहरे पर एक्साइटमेंट और बड़ी सी स्माइल थी। किसके मैसेज को देखकर इतनी स्माइल की जा रही है? आरव ने उसे घूरते हुए पूछा। आयु ने उसकी तरफ देखा और फिर उसी एक्साइटमेंट के साथ कहा, मैसेज तो निर्वाण सर का है, लेकिन एक्साइटमेंट का कारण कोई और है। देखो, मैं निर्वाण सर से भले ही शादी करना चाहती होंगी, लेकिन मेरा क्रश कोई और है। वो भी एक डॉक्टर है और बहुत फेमस डॉक्टर भी। तुम्हें पता है वो हमारे हॉस्पिटल में काउंसलिंग के लिए आ रहा है। तुम बताओ ना मैं क्या पहनकर जाऊं। तुम तो डिजाइनर थे ना, मुझे एक अच्छी ड्रेस सिलेक्ट कर दो। एक काम करो ना, तुम ही मुझे तैयार कर दो ताकि मैं अच्छी लगूं। और तुम्हें लगता है मैं ऐसा करूंगा? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप घर पर रहो। अगर हॉस्पिटल जाना भी है तो क्लासेस अटेंड करके वापस आ जाना। शादी हो गई है तुम्हारी, और नहीं भी हुई होती तो भी उसके पास नहीं जाने देता, आरव ने आयु को डांटते हुए कहा, जिस पर उसका मुंह बन गया। आरव की बातों का आयु पर कोई असर नहीं हुआ। वो उसी एक्साइटमेंट से बोली, तुम कुछ भी कहो, मैं तो डॉक्टर सिंघानिया को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इतनी कम उम्र में इतने सक्सेसफुल और बड़े न्यूरोसर्जन है वो। उनको देखने के बाद मैंने न्यूरोसर्जन बनने का डिसीजन लिया था। अच्छा, अगर मैंने उन्हें इम्प्रेस कर लिया तो क्या तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे प्लीज?
भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा डॉक्टर सिंघानिया। आई बेट यू तुम्हें मैं उसका सेमिनार तो अटेंड करने नहीं दूंगा, आरव ने चैलेंजिंग वॉइस में कहा। आयु आरव की बातों पर ठीक से ध्यान तक नहीं दे रही थी। वो तो अपने क्रश से मिलने के लिए एक्साइटेड हो रही थी। उसको वहीं पर छोड़कर आयु क्लोजेट एरिया में चली गई। आरव आयु के लिए जो कपड़े लेकर आया था उसी में से उसने एक शॉर्ट ब्लैक बॉडीकॉन ड्रेस निकाला और अपने साथ में ले लिया। काउंसलिंग क्लासेस शाम के वक्त होनी थी, इस वजह से आयु घर से तैयार होकर नहीं जा रही थी। उसे फॉर्मल्स में देखकर आरव ने कहा, चलो अच्छा है, जल्दी ही समझ गई कि तुम्हें मेरे अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचना है। बहुत अच्छी लग रही हो और ऐसे ही हॉस्पिटल जाना। मैं कपली और बाकी सब अपने साथ ले रही हूँ। क्लासेस जल्दी खत्म करके किसी मेकअप आर्टिस्ट के पास जाकर अच्छे से तैयार होकर आऊंगी। और हाँ, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा, मैं डॉक्टर सिंघानिया से मिलकर रहूंगी। तुम ऐसे ही जलते रहना, जल कुकड़ू कहीं के, आरव खुराना। पता ही, सो स्मार्ट एंड हैंडसम, तुम नहीं समझोगे कितनी लड़कियां मरती हैं उन पर। वैसे तो मैं बाकी लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो किसी को देखकर ऐसे उसके पीछे पागल हो जाए, पर उसकी तो बात ही अलग है। उसकी एक फ़ोटो भी दीवाना बनाने के लिए काफ़ी है। आयु आरव को परेशान करके वहाँ से निकल गई थी। मैं भी देखता हूँ कैसे मिलती हो तुम, आरव ने सिर हिलाकर कहा। आरव आयु को रोकने के लिए कुछ करता उससे पहले उसके पास महिरा का मैसेज आया, जो उसे अपने ऑफिस बुला रही थी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए जो लोग वहां मौजूद थे वो एक मीटिंग करना चाहते थे जिसमें आरव की मौजूदगी जरूरी थी। आरव महिरा से भी ध्यान नहीं हटाना चाहता था, इसलिए वो मीटिंग में जाने के लिए निकल गया और कुछ पल के लिए उसके दिमाग से डॉक्टर सिंघानिया का ख्याल पूरी तरह निकल गया था।